नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की संसद पहुंच गए हैं। वे अब से कुछ ही देर में संसद के सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इथियोपिया के संबंधों को सामरिक स्तर तक विस्तार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ वार्ता में इस पर सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि इससे दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है। श्री मोदी ने यह पुरस्कार दोनों देशों के उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पोषित किया है।
यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो, या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति।
गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि यह किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति को दिया गया 28वां सम्मान है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। भारत और ओमान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने और सदियों पुराने व्यक्तिगत संबंधों का जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम से ओमान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। दोनों देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हैं और इससे निपटने के लिए एक दूसरे के साथ हैं। रणनीतिक रूप से भी दोनों देश एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ओमान के मस्कत में हमारे संवाददाता से बातचीत में भारत के राजदूत जीवी श्रीनिवास ने कहा कि दोनों देश सहिष्णु हैं और सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान करते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक VBG रामजी को कल लोकसभा में पेश किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इससे ग्रामीण परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। एक रिपोर्ट।
विधेयक में खेती के मौसम में खेतिहर श्रमिकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का विशेष प्रावधान किया गया है। विधेयक के तहत मजदूरी दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी और अधिसूचना जारी होने तक मौजूदा मजदूरी दरें ही लागू रहेंगी। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय नौसेना आज एक समारोह में गोवा स्थित INS हंसा में अपने दूसरे MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS-335 ओस्प्रे को शामिल करने जा रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज समारोह की अध्यक्षता करेंगे। अत्याधुनिक हथियारों, सेंसरों और विमानन उपकरणों से लैस MH-60R पनडुब्बी रोधी युद्ध, जमीनी हमलों और गैर पारंपरिक युद्ध के खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। भूटान आज 118वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तोब्गे ने कहा कि ये दिवस भूटान नरेशों के दूरदर्शी नेतृत्व, एकता और मूल्यों के सम्मान का प्रतीक है जो भूटान को एक विशेष देश बनाता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री ल्योपो जीएन धुंगेर और भूटान की जनता को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP 3 के कार्यान्वयन से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 10,000 रूपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस अवधि के दौरान निर्माण कार्य रुकने से दिहाड़ी मजदूर बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा कि यह राशि सभी पंजीकृत और सत्यापित निर्माण श्रमिकों को दी जाएगी। श्री मिश्रा ने ग्राफ 4 के वर्तमान कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित निर्माण श्रमिकों को भी मुआवजा देने की घोषणा की। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी और निजी व्यवसाय तथा कार्यालय कल से केवल 50% क्षमता पर ही कार्य करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।